ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூர் அபவுட் டு லிசன் யதி பஞ்சகம் பிரசன்ட் பை சுவாமி ஸ்ரீ சிதம்பரானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
பதரம் நோ அபிவாதயமனஃ. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஆனந்தமானந்தகரம் ஜானஸ்வரூபம் நிர்வாணம் யோகீந்திரமீட்யம் பவரோகவைத்யம் ஸ்ரீ சத்குரும் நித்யமஹம் நம. தேவி ப்ரபன்னார்த்தி ஹரே ப்ரசீத ஜகத்தோகிலஸ்ய ப்ரசீத விஸ்வேஸ்வரி பாஹி விஸ்வம் மமீஸ்வரி தேவி சராசரஸ்ய யம் சைவாஹ ஸ்வமுபாஸதே சிவ இதி ப்ரஹ்மேதி வேதாந்தினோ பௌத்தா புத்தைதி ப்ரமாண படவஹ கர்த்தே நையாயிகாஹ அரஹந்நித்யத ஜைன சாஸன ரதாஹ கர்மேதி மீமாம்சகா சோயம் நோ விதாது வாஞ்சித ஃபலம் த்ரைலோக்யநாதோ ஹரி சச்சிதானந்த ரூபாய காப்பய விநாஷ்ணா நம. காப்பய விநாஷ்ணா நம.
ஐ சவிலோக்கம் பூர்வம் பகவான் பாவநாம் பிரதான்
ராதே கிருஷ்ண ராதே கிருஷ்ண 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 ராதே ராதே. ராதே ஷாம் ராதே ஷாம் 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 ராதே ராதே. ஜெய ஜெய ராதே கிருஷ்ண ராதே கிருஷ்ண 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 ராதே ராதே. ராதே ஷாம் ராதே ஷாம் 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 ராதே ராதே. ராதே கிருஷ்ண ராதே கிருஷ்ண 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 ராதே ராதே. राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे जय जय राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे राधे श्याम 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 राधे 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 जय जय राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे राधा कृष्ण भगवान की जय सदगुरुदेव भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय सनातन धर्म की जय श्री शंकर भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय नमः पार्वती पते हर हर अखिल कोट ब्रह्मांडादिनायक परात्पर तत्व पर ब्रह्म परमात्मा तथा उन्हीं के अभिन्न स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में अनंतश प्रणाम। परमार्थ पथ पथिक सज्जनों एवं माताओं, एक होती है नदी और एक होता है समुद्र। नदी में नदी तो एक ही होगी, लेकिन समुद्र में सब नदियां मिलती हैं। और जो लोग समुद्र स्नान करते हैं तो ये माना जाना चाहिए कि वे संपूर्ण नदियों का स्नान कर रहे हैं, नहीं माना जाना चाहिए, है ना? ऐसी प्रेमपुरी आश्रम समुद्र है, इसमें आप लोग स्नान करते हैं, सारी नदियां आके यहां मिलते हैं। और उन्हीं मिलने वाली नदियों में से एक छोटी नदी चिदंबरानंद की भी है। अगर समुद्र में स्नान करने वालों का यह सौभाग्य है कि वे संपूर्ण नदियों का लाभ समुद्र में ले लेते हैं, तो नदी का भी यह सौभाग्य है कि वो समुद्र में आके मिलती है। जो नदियां समुद्र में नहीं मिलती वे दूसरी नदियों का सहारा ढूंढती हैं कि मिलें।
जो मिलती है वो भाग्यशाली है। प्रेमपुरी आश्रम एक ऐसा सागर है, एक ऐसा समुद्र है कि जहां श्रोताओं का भी सौभाग्य है तो मैं कहता हूं वक्ताओं का भी सौभाग्य है। सबको आनंद आता है, सुनने वालों को भी और सुनाने वालों को भी। आप लोग इतने आनंद और प्रेम से सुनते हैं, मुझे प्रसन्नता इसलिए और अधिक होती है कि यही होने के कारण मैं कई बार आ जाता हूं, तो इस सागर में मिलने का अवसर हमको कई बार मिलता है। सुबह के प्रवचन में पिछले कई वर्षों से भगवान शंकराचार्य के द्वारा रचित स्तोत्रों पर चर्चा करते हैं हम। मजगोविंदम, धन्याष्टकम, साधन पंचकम, इन पर चर्चा करने के बाद इस बार हम लोगों ने, या मैंने कही, यति पंचकम चुना है। आचार्य का ही स्तोत्र है। भगवान शंकराचार्य के योगदान को भारतीय संस्कृति, और मेरा ऐसा मानना है कि विश्व का कोई भी व्यक्ति जो भारतीय संस्कृति में रुचि रखता है आचार्य का ऋणी है। कोई उनके योगदान को भुला नहीं सकता, अगर वो नहीं होते तो आज कुछ नहीं होता। जो कुछ भी आज आप धर्म के नाम पर या संस्कृति के नाम पर जितनी भी अच्छाइयां हमको नजर आ रही हैं वो आचार्य की देन है। इसलिए उनके स्तोत्रों पर चर्चा करके हम उनको एक तरह से उनके सामने नतमस्तक होते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। आचार्य ने स्तोत्रों के द्वारा भी हमारा अच्छा मार्गदर्शन किया है। सरल भाषा में, सरल शब्दों में बहुत अच्छी बातों को कह के हमारे कठिन जीवन शैली को आसान बनाने का प्रयास किया है। आध्यात्मिकता कितनी कठिन है हमने अब तक ये जाना है और सुना है। दो चीजें और समझने की है। हमने संसार में सदैव कठिनता को जानने की कोशिश की है, चाहे वो जीवन व्यवहार का हो, चाहे वो जीवन अध्यात्म का हो। हमने हर समय कठिनता को जिया है। सरलता हमें नहीं पचती या हम नहीं समझ पाते, बात अलग है। सीधी सीधी बात अगर कोई कहता भी है तो हमको समझ में नहीं आती। हमें कठिनता में रुचि है, हमने हर चीज को कठिन बनाया हुआ है। लेकिन ये मैं पक्के तौर पे आपको कहता हूं कि आध्यात्मिकता जितनी सहज और सरल है दुनिया में कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती। उस सरलता का प्रतिपादन आचार्य ने और सरल तरीके से किया है, चाहे वो धन्याष्टकम हम सुनते हैं, साधन पंचकम सुनते हैं, भजगोविंदम सुनते हैं, अथवा आगे हम कौपीन पंचकम सुनेंगे। कठिन से कठिन बातों को बहुत ही सरल तरीके से कहा है। बात इसलिए भी जानने योग्य है और समझने योग्य है कि सरलता की जरूरत क्यों पड़ी, तब मुझे समझ में आता है कि जब भी आप शहर में सफर करते हैं, यात्रा करते हैं, आप देखते हैं कि जिस रास्ते पर भीड़ बढ़ने लगती है तो आप नए रास्ते की खोज करते हैं। जिस रास्ते पर ट्रैफिक बढ़ने लगता है आप नया रास्ता ढूंढते हैं, सरकार नया रास्ता खोजती है कि यहां बहुत भीड़ बढ़ गई थोड़ा बाईपास और बनाया जाए, यहां थोड़ी और भीड़ बढ़ गई थोड़ा फ्लाईओवर बनाया जाए, यहां और भीड़ बढ़ गई कि थोड़ा हाईवे बनाया जाए, तो मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस बना कि ईस्टर्न एक्सप्रेस बना कि क्या क्या, अभी नया एक और ब्रिज बना, कौन सा हो, साइंस है, फ्री वे, वाह, है ना। ये क्यों? ये इसीलिए, आपको भीड़ से बचाने के लिए, आपको मुश्किलों से बचाने के लिए, आपको तकलीफों से बचाने के लिए। यद्यपि भीड़ रहेगी लेकिन थोड़ा आपको रास्ता आसान हो जाए। हमारे आचार्यों ने यही फ्री वे बनाने की कोशिश की है, हमारे आचार्यों ने यही बाईपास बनाने की कोशिश की है, हमारे आचार्यों ने यही हाईवे बनाने की कोशिश की है, ताकि लोग उस आध्यात्मिक तत्व तक, डेस्टिनेशन बोलते हैं, गंतव्य, अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच सके, बिना किसी सिग्नल के, बिना किसी ट्रैफिक के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी मुश्किल के, सिर्फ चलते जाए चलते जाए। अच्छा, वो सफर बड़ा अच्छा लगता है जिसमें रुकना ना पड़े, है ना, मानते हैं आप? हाँ, अब एक बात ध्यान रखना, आपको याद दिला दूं कि मैं 14 दिन रहने वाला हूं, आपको बोलना पड़ेगा। हाँ, है ना, वो आदत में लानी पड़ेगी बात, तब मुझे लगेगा कि हाँ अब मैं प्रेमपुरी आ गया हूं जी, और आपको लगेगा कि हाँ स्वामी जी आ गए। क्या कह रहा था मैं? नॉन स्टॉप। प्यारी बात है कि हमको वो सफर बहुत अच्छा लगता है जिसमें रुकना ना पड़े, लेकिन कमाल की बात है कि आध्यात्मिकता में हम ठहरे ही हुए हैं। विचित्र बात है कि यात्रा हमको वो अच्छी लगती है जहां कोई सिग्नल ना हो, कोई ट्रैफिक ना हो। हमें पसंद वो आता है कि सड़क पर सिर्फ हम हों, कि हमारे लिए ही रोड बनी हो, पसंद हमको ये आता है। लेकिन बहुत 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 खटकती है ये बात कि आध्यात्मिक पथ पर जब हम चलते हैं तो हम साथी ढूंढते हैं, आध्यात्मिक पथ पर हम अकेले सफर करना पसंद नहीं करते, आध्यात्मिक पथ पर हम चलते रहना पसंद नहीं करते, वहां थोड़ा विश्राम भी चाहिए, थोड़ा ठहराव चाहिए। और थोड़ा ठहराव क्या चाहिए, हम रुके ही हुए हैं, हम सुने, हम चले ही कब हैं, हमारा सफर शुरू ही कहां हुआ है, हम चलते ही कब हैं, हमारी यात्रा होती ही नहीं है, हम सिर्फ सुनते हैं, हम सिर्फ बैठते हैं, हम सिर्फ जानकारियां इकट्ठा करते हैं, हम उन लोगों से हैं, हम उन यात्रियों में से हैं जो कंप्यूटर बैठ करके सारे रास्तों की खोज करता है लेकिन जाता कहीं नहीं। उसको सारे रास्तों की जानकारी है, सरल से सरल, कठिन से कठिन, सारे रास्तों की जानकारी है घर बैठे, और वो जानना चाहता है, वो चाहता है कि मेरी नजर से एक भी रास्ता छुपा नहीं होना चाहिए, और अगर छुपा हुआ हो तो पूछने की कोशिश करता है कि वहां का रास्ता कौन सा है। लेकिन अद्भुत और विचित्र बात है कि वो गया कहीं नहीं। हम में से अधिकांशतः ऐसे ही लोग हैं। ये बात भी खटकेगी, ये बात भी हमको चुभेगी, लेकिन सच्चाई यही है कि हम में से अधिकांशतः ऐसे हैं कि जिनको सारे रास्तों की जानकारी है कि भक्ति क्या है, कि ज्ञान क्या है, कि वैराग्य क्या है, कि संन्यास क्या है, कि गृहस्थ आश्रम क्या है, कि उपासना क्या है, कि उपदेश क्या है, कि भजन क्या है, कि कीर्तन क्या है, कि पुराण क्या है, कि गीता में भगवान ने क्या कहा, कि आचार्य ने ब्रह्मसूत्र में क्या कहा। आप ब्रह्मसूत्र को भी टटोलेंगे, भाष्य में, शारीरिक भाष्य में आचार्य ने क्या कहा, आपको आपको उसकी भी जानकारी चाहिए, आप उसको भी पाने की कोशिश करेंगे। तो सब जानकारियां हैं हमारी मेमोरी में, सब जानकारी हमने इकट्ठी की है, लेकिन कोई पूछे कि ढेर सारे रास्तों में से, ढेर सारे मार्गों में से हमने किस में से चलना शुरू किया, तो थोड़ा मुश्किल होगी, तो थोड़ा कठिन होगा। तब बात कहां आएगी कि हां हम वही है, पूजा करते हैं, थोड़ा सा आरती करते हैं, थोड़ा सा भगवान का भजन करते हैं, थोड़ा कीर्तन करते हैं, दुख आता है तो रो भी लेते हैं, सुख आता है तो हंस भी लेते हैं, पड़ोसी की परेशानियों में या पड़ोसी की परेशानी से हम जल भी जाते हैं, कि किसी से ईर्ष्या भी कर लेते हैं, कि किसी से द्वेष भी कर लेते हैं। अद्भुत विचित्र बात है कि रास्तों की सारी जानकारियां हैं लेकिन हम ट्रैफिक में ही हैं। क्या फर्क है पड़ता है कि आपको इतने रास्तों की जानकारी होने से? मैं कलकत्ता में था और मुझे मालूम है, और जो लोग गए हैं वहां उनको पता है कि वहां का ट्रैफिक बड़ा खतरनाक, हमारे लाला भैया इनको मालूम है, बड़ा खतरनाक ट्रैफिक, आप फंस गए तो कहीं निकलने की संभावना नहीं। एक बार हम लोग कहीं जाना था और कार्यक्रम में पहुंचना था 7:30 बजे, और जहां से हम लोगों को जाना था वहां से वहां तक पहुंचने में अगर ट्रैफिक नहीं होता तो ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगता। तो ट्रैफिक की वजह से हम लोगों ने कहा कि थोड़ा पहले चलते हैं, तो 6 बजे चले कि 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, आधा घंटे 1.5 घंटे। लेकिन ऐसा ट्रैफिक आप आश्चर्य करेंगे, 7:30 बजे हम वहीं फंसे थे, जहां से निकले वहीं फंसे थे, साढ़े सात बजे तक जहां पहुंचना था वहीं, यानी पांच मिनट चले और फंस गए, और जहां जाना था वहां हम रात को दस बजे पहुंचे। इतना भयानक ट्रैफिक है ना। तो हमको ट्रेन पकड़नी थी, हम वापस आ रहे थे, आते तो मैंने ड्राइवर से कहा टैक्सी वाले से कि भाई यहां ट्रैफिक बहुत होता है, हमसे ज्यादा तुमको मालूम है, तो उस रास्ते से मत ले चलना, दूसरे रास्ते से ले चलना ताकि हम लोग जल्दी पहुंच जाए। मैं सो गया और उसने उसी में डाल दिया जहां ट्रैफिक था। हम जानते हैं लेकिन फंसने में हमको मजा आता है। तो जानकारी होने का अर्थ क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना। संसार के दुखों से दुखी हो अगर हम हो रहे हैं तो सत्संग में आने का फायदा क्या है। संसार की परेशानियों से यदि हम परेशान हुए तो ये वही वाली बात कि रास्ते में आप सफर कर रहे हैं, ट्रैफिक में फंस गए, तो आपको मालूम था कि एक बाईपास है, आपको मालूम था कि एक फ्रीवे है, आपको मालूम था कि एक हाईवे है, तो फिर उस पर आप क्यों नहीं चले, क्यों नहीं गए। और आपने कभी गौर किया होगा, आपने देखा होगा कि जब आप फंस जाते हैं तब आप कहते हैं बड़ी गलती किया, हम वहां से जाना चाहिए था। अब पछताई हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जाना आपको पहले चाहिए था लेकिन आप ये बात बोलते कब हैं, जब फंस जाते हैं। जाना चाहिए था आपको सीलिंक होकर, आराम से निकल जाएंगे, डेढ़ घंटे का रास्ता 20 मिनट में आप पार कर लेंगे, लेकिन आप आते इसी रास्ते से, कि आप जाते इसी रास्ते से, फंस जाते हैं तब कहते हैं अरे अरे गलती किया, यहां से जाना चाहिए। मेरा एक ही निवेदन है कि इतना सारा सत्संग सुनने के बाद, इतना सारा प्रवचन सुनने के बाद भी अगर संसार की परिस्थितियों से हमारे चित्त में दुख पैदा होता है, विषाद पैदा होता है, ईर्ष्या पैदा होती है, जलन पैदा होती है, तो इन रास्तों की जानकारी का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि हमने जाना तो लेकिन उन रास्तों पर सफर नहीं किया, हम ट्रैफिक में ही फंसे हुए। जब जब मैं किसी सत्संग करने वाले व्यक्ति को रोते हुए देखता हूं संसार की वजह से, जब जब सत्संग करने वाले व्यक्ति को दुखी होते हुए देखता हूं, तो मेरे को एक ही बात याद आती है कि इसको रास्ते की जानकारी है लेकिन ये फंसा हुआ है। हम एक नए हाईवे से आपको परिचय करवाएंगे, हम एक नए फ्रीवे से आपको परिचय करवाएंगे अगले 14 दिन में कि अगले 13 दिन में, जो आचार्य ने बनाया है, बेहतरीन बनाया, जानकारी आपको न हो हम लेके चलेंगे। लेकिन इसका भी सिर्फ क्या टिक मार्क बोलते हैं, वो अगर हुआ कि हमने ये भी सुना कि ये भी जानकारी हो गई, तो उसके फायदे से भी हम वंचित रहेंगे। हमने जाने जितने रास्ते उनमें से एक रास्ता हम और जान लेंगे, हमारी जानकारी और बढ़ जाएगी, हमारा ज्ञान और बढ़ जाएगा, लेकिन फायदा तभी मिलेगा जब आप इस पर चलना शुरू करेंगे। तो मेरा एक ही निवेदन है कि जो आचार्यों ने कोशिश किया है, जो आचार्यों ने एक सुंदर सफर और शांतिपूर्वक यात्रा के लिए आपकी डेस्टिनेशन या अथवा गंतव्य तक पहुंचने के लिए जो सुंदर रास्तों का निर्माण किया है, उस रास्ते पर हम प्रेम से सुन करके और आसानी से आगे बढ़ें, यह मेरा निवेदन है। और हम इस बार इसी पर चर्चा करेंगे। नाम है कौपीन पंचकम, जिसको यति पंचकम भी कहा जाता है। यति और कौपीन एक ही बात है। कौपीन शब्द शायद कई लोगों को जानकारी न रही हो, लेकिन कौपीन शब्द का अर्थ है महात्मा लोग शरीर ढकने के लिए जिस वस्त्र का उपयोग करते हैं। देहाती भाषा में अगर आपने वो शब्द को सुना हो तो जिसे हम लंगोटी कहते हैं, है ना, दो कपड़ों से बना करके और महात्मा लोग बांधते हैं, वो कौपीन है, पवित्र है, उसका भी अपना एक महत्व है। यति शब्द से आप समझते ही हैं कि सन्यासी। महाराजा ययाति का नाम सुना होगा आपने, भागवत में खूब सुना है, उनके बड़े भाई महाराजा नहुष के छह पुत्रों में से सबसे बड़े यति, और चूंकि वो विरक्त हुए महापुरुष हुए इसलिए उनका नाम यति शब्द में, यति का अर्थ ही सन्यासी हो गया, ऐसा समझना चाहिए। यति माने सन्यासी, यति माने विरक्त, यति माने जो संसार से चिपका हुआ नहीं है। वो पांच श्लोकों में उस महापुरुष जो कौपिन धारण करता है, वो महापुरुष जो सन्यासी है, वो महापुरुष जिसने जो संसार से चिपका हुआ नहीं है, वो जीवन में उसकी विशेषता क्या है, पांच श्लोकों में आचार्य हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। कोई भी ये सोच सकता है कि सन्यासी के जीवन में क्या विशेषता है, उसको जानने से गृहस्थियों को क्या फायदा। सन्यासी के जीवन में जो विशेषता है वो गृहस्थ को जानने से क्या मिलेगा, तो मेरा एक ही निवेदन है कि गृहस्थ और सन्यास ये दो चीजें आप वेश से निर्धारित न करें, रूप से निर्धारित न करें कि कौन गृहस्थ है और कौन सन्यासी है। मेरी बात समझे, रूप वेश इन कपड़ों को पहनने वाला सन्यासी है और घर में रहने वाला गृहस्थ है कि संसारी है, ये चीजें सिर्फ कपड़े पहनने से अथवा कहां रहने से महत्व की बात नहीं है। सन्यास सिर्फ एक स्वभाव है, सन्यास सिर्फ एक व्यवहार है, सन्यास सिर्फ एक विचार है, सन्यास सिर्फ एक आचरण है, और वो कहीं भी हो सकता है। इसलिए जनक राजा होते हुए भी सन्यासी हैं और बहुत सारे सन्यासी होते हुए भी गृहस्थ से ज्यादा फंसे, और ये हम देख सकते हैं, हमको दिखाई पड़ता है। कौन कहां है महत्वपूर्ण नहीं है, कौन कैसा है महत्वपूर्ण है। आप कहां बैठे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने सुना है कि एक महात्मा के पास दो लोग गए दीक्षा लेने के लिए कि आप मुझे संत बनाइए। महात्मा ने कहा कि तुम्हें परीक्षा देनी पड़ेगी। बड़ी अद्भुत बात है कि दोनों के परीक्षा के लिए महात्मा ने अलग अलग स्थानों पर भेजा। एक व्यक्ति को विश्यालय भेजा कि जाओ जाकर के वहां उसके यहां रह करके तुम साधना करो, और दूसरे को वन में भेजा, जंगल में भेजा कि सांपों की बांबी जानते हैं जहां सांप रहते हैं उसके पास में बैठ करके जाकर के भजन करो, या क्या अलग जाकर के भजन करो। लेकिन कमाल की बात है, एक जो वन में बैठा है उसके मन में वेश्या का घर घूम रहा है कि वो उसको वहां भेजा और मुझे यहां क्यों, और वो जो वेश्या के घर में बैठा हुआ है उसके मन में वन घूम रहा है कि कितना अच्छा होता कि मैं यहां न होकर के वहां होता तो मुझे ज्यादा बढ़िया तरीके से चिंतन कर सकता, अथवा वो गया वहां, हमने अपने गुरुजी से सुना कि वो गया वहां और उसने उस वेश्यालय में जाकर के उसको हाथ जोड़ा, कहा हमारे गुरुजी ने यहां साधना करने के लिए भेजा है, हम यहां बैठ करके साधना करेंगे। तो हमको आपसे या आपके घर से कोई लेना देना नहीं है, कोना दे दीजिए मैं बैठ करके साधना करूंगा। तो वहां बैठ करके भी वो भजन कर रहा है और दूसरा जहां भजन होना चाहिए वहां पर भी बैठ करके भजन नहीं कर पा रहा। मेरी बात समझ में आए। तो एक व्यक्ति कहां है यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा है यह महत्वपूर्ण है। आप घर में रहकर के भी सन्यासी हो सकते हैं और आप आश्रम में रहकर के भी गृहस्थी हो सकते हैं। आप घर में रहते हुए भी साधु हो सकते हैं और साधु के घर में रहते हुए भी राक्षस भी हो सकते हैं, दैत्य भी हो सकते हैं। तो हनुमान जी महाराज और जब संजीवनी बूटी लेने के लिए गए तो वहां उन्होंने देखा कि एक महात्मा राम राम जप रहा है, लेकिन वो राम राम जपने वाला महात्मा नहीं था। वो क्या था आप जानते हैं, वो क्या था हम जानते हैं, किसी जानकी जी का हरण करने वाला व्यक्ति रावण किस वेश में था, संत के वेश में था। तो वेश महात्मा का था, रूप महात्मा का था, लेकिन आचरण और स्वभाव महात्मा का निधन। बहुत छोटा था मैं, 93 की बात है, और एक संत ने हमसे कहा, परमार्थ निकेतन ऋषिकेश, उन्होंने कहा कि आजकल महात्मा बहुत बेकार हो गए,